नमस्कार भारत, 23 अगस्त दिन मंगलवार, मैं हूं संदीप सोनी। झमाझम बारिश के बाद भारत के कई राज्य बाढ़ की चपेट में।
गंगा खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। कानपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, रायबरेली, इलाहाबाद और बलिया में बाढ़ उफान पर है।
बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र के बाद अब बारिश ने पश्चिमी मध्य प्रदेश का रुख कर लिया है।
राजस्थान में पिछले दो दिन में वर्षा ने भारी जनजीवन अस्त व्यस्त किया है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीर घाटी में शांति के लिए बातचीत पर जोर दिया।
प्रधानमंत्री जी ने बड़ी अच्छी बात कही, ये होना चाहिए। हम लोगों ने शिमला एग्रीमेंट में भी यही कहा कि दोनों देश जो है वो मिलजुल करके बातचीत के जरिए हल करेंगे, लेकिन उसमें कोई बहुत ज्यादा कोई प्रोग्रेस नहीं हुई।
होंगी खेल की खबरें और समाचार पत्रों की सुर्खियां भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, निखिल रंजन से। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में बाढ़ की समस्या गंभीर हो गई है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश में बाढ़ के कारण लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। बड़ी संख्या में लोगों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा है। बिहार और उत्तर प्रदेश में गंगा तो मध्य प्रदेश में शिप्रा और चंबल नदी उफान पर हैं। राजस्थान में भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति बन गई है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल की कुल 56 टीमें इन राज्यों में राहत के कामों में लगाई गई हैं। बांग्लादेश के चटगांव में एक खाद फैक्ट्री में गैस रिसाव के बाद करीब 40 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से कई लोगों की स्थिति गंभीर है। फैक्ट्री से डाई अमोनियम फॉस्फेट गैस का रिसाव हुआ है। इसकी चपेट में आए लोगों ने सांस लेने में दिक्कत होने की शिकायत की। आसपास के इलाके से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया है। दमकल विभाग की कम से कम 10 यूनिट गैस रिसाव को रोकने पर काम कर रही हैं। तुर्की की सेना ने उत्तरी सीरिया में टैंकों से इस्लामिक स्टेट और कुर्द मिलिशिया के ठिकानों पर हमले किए हैं। तुर्की से हुई इस गोलाबारी में जाराब्लूस और मनबी शहर में मौजूद ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इससे पहले तुर्की ने कहा था कि चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट से उत्तरी सीरिया को पूरी तरह से खाली करा लिया जाएगा। दक्षिण अफ्रीका की सत्ताधारी अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस ने देश के सबसे बड़े शहर और आर्थिक केंद्र जोहानिसबर्ग पर अपना नियंत्रण खो दिया है। विपक्षी दलों के गठबंधन डेमोक्रेटिक अलायंस के हरमन मशाबा को शहर के पार्षदों ने मेयर चुन लिया है। दक्षिण अफ्रीका में 20 साल पहले रंगभेद खत्म होने के बाद ऐसा पहली बार हुआ है। मेयर चुने जाने के बाद मशाबा ने कहा कि वो शहर के प्रशासन में बड़े पैमाने पर सुधार करेंगे। मैं आज की शाम ये साफ कर देना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार इस शहर का सबसे बड़ा दुश्मन है और इस बात की हम घोषणा करते हैं। मैं इस बात के लिए प्रतिबद्ध हूं और ये शपथ लेता हूं कि डेमोक्रेटिक अलायंस के नेतृत्व वाले प्रशासन पिछले 5-10 सालों में लोगों का जो भी पैसा गलत खर्च हुआ उसे वापस लाएगा। हम ये करने जा रहे हैं जिससे कि अपने लोगों को बुनियादी सुविधा दे सकें। जोहानिसबर्ग के नए मेयर मशाबा के शब्द। मशाबा ने यह भी कहा कि जिन लोगों के पास नौकरी या काम नहीं है उनकी मदद करना नए प्रशासन की प्राथमिकता होगी। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। यूरोपीय देश जर्मनी, फ्रांस और इटली ने इस बात पर जोर दिया है कि यूरोपीय संघ को नए सिरे से बल देने की ज़रूरत है। इन देशों का कहना है कि ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से बाहर जाने पर फैसला करने के बाद इसकी ज़रूरत पैदा हुई है। तीनों देशों के नेताओं की इटली में सोमवार को मुलाकात हुई। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत में सभी श्रोताओं को संदीप सोनी का नमस्कार। आप इस कार्यक्रम को रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और अपने मोबाइल फोन पर भी सुन रहे हैं। नमस्कार भारत का सीधा प्रसारण। इन दिनों भारत के कई राज्यों में बारिश और बाढ़ की वजह से लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। जानेंगे हम बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान का क्या है हाल, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से, जहां गंगा और उसकी सहायक नदियां उफान पर हैं। इससे आम जनजीवन पर बुरा असर पड़ा है। बाढ़ की वजह से इन दिनों बनारस के मणिकर्णिका घाट का दृश्य भी पूरी तरह बदल गया है। आइए सुनते हैं बनारस से हमारे सहयोगी रोशन जायसवाल की रिपोर्ट।
बाढ़ की विभीषिका से उत्तर प्रदेश के कई जिले प्रभावित हैं। इन्हीं में से एक वाराणसी में भी गंगा कई दिनों पहले ही खतरे के निशान को पार कर चुकी है। बाढ़ से होने वाले नुकसान और प्रभाव को जानने के लिए तंग गलियों, कंधे तक पानी और नाव पर सवार होकर मैं आ पहुंचा हूं महाश्मशान मणिकर्णिका घाट पर। घाट पर बने छत यानी प्लेटफॉर्म पर बाढ़ के चलते लाशें जल रही हैं। चौदह में आए तमाम लोगों को काफी दिक्कत का भी सामना करना पड़ा है। किस तरह की दिक्कत से आपको रूबरू हो?
मैं रवि कुमार श्रीवास्तव हमारे बहन के ससुर को लेकर आए हैं। बाढ़ के चलते मैंने नाव से किसी तरह से इस ऊंचे स्थान पर ले आकर रखे हैं। पैदल लेके आए लेकिन जहाँ तक पानी था वहाँ तक तो सभी लोग आए। उसके बाद नौका किया गया नौके पर, लेकिन यहाँ पर आने पर भी खड़े होने का भी स्थान नहीं है, तो दो चार लोग केवल हैं यहाँ पे।
बाड़ी ले आते समय की गली में पानी कम से कम कंधे तक है और आने में बहुत दिक्कत, और जो नाव वाले हैं वो लोग 20 रुपए से लेके 40 रुपए तक ही उस पार तक ले रहे हैं।
हम बनारस के ही रहने वाले हैं, चौक से आ रहे हैं। अभी हमारी सास गुजर गई, हम लोग लेके आए उनको। लाने में यहाँ पर हम लोग को जितना दिक्कत आया, जबकि जिस तरह से हम लोग सुन रहे थे कि हाँ यहाँ पर बड़े आराम से लाया जाए, बड़ा लोग सहायता कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ प्रशासन को ये देखना चाहिए कि कम से कम कुछ तो उसकी व्यवस्था करे।
बाड़ी तो अभी छत पर जलाई जा रही है, अभी और कोई जगह ही नहीं है, और उसको लाने के लिए तमाम प्रकार की झंझट हो रही है।
वाराणसी के मणिगढ़िका महाश्मशान पर इस समय अपने काम में बहुत व्यस्त हैं दोम परिवार के ही सदस्य।
जगह की कमी है पहली बात, दूसरी बात जो सेवक काम करने जा रहा है वो आज से परेशान होकर बीमार पड़ जा रहा है। पानी में आना आग में जाना, पानी में आना आग में जाना, यही परेशानी है।
ये जो बातें भी आ रही हैं कि काफी जो डेड बॉडी है जल में प्रवाहित करा दी जा रही है, ऐसी भी कोई बात?
ऐसी कोई बात नहीं, आप स्वच्छ अपने आपके सामने देख लीजिए, जो भी बाड़ी आ रही है भले लेट हो जा रहा है लेकिन जला कर राख करके तब वो बाड़ी प्रवाहित की जाती है।
वाराणसी में बाढ़ के चलते न केवल शव यात्री बल्कि मणिगढ़िका महाश्मशान पर लकड़ी व्यापारियों को भी काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा है।
हमारा नाम अरुण सिंह है और यहाँ पे बाढ़ बढ़ जाने से हम लोग जो वहाँ लकड़ी पहुँचाते हैं वो कंधे कंधे पर पानी में घुस कर लकड़ी महाश्मशान तक पहुंचाया जा रहा है। पूरा पानी भरा हुआ है, नैया से तो लकड़ी जा रही है, वहां जाने के बाद जो है करीब जाने के बाद इतना पानी का बहाव तेज है कि नैया से उतर के फिर जो है कंधे पे लाद के लेके जाना पड़ता है काफी दूर तक। तो ये परेशानियां हैं लेकिन इसी में आदमी एडजस्ट कर रहा है।
चौतरफा जलमग्न हो चुके महाश्मशान पर अगर कुछ नजर आ रहा है तो वो है वहां बना ऊंचा प्लेटफॉर्म यानी छत, और इस छत तक शव और शव यात्रियों को पहुंचाने के काम में दिन रात लगे हैं नाविक। ये नाविक बताते हैं कि
इसमें बहुत दिक्कत है, इसमें नाव से बॉडी जा रही है, 250-300 लोग को आदमी डगा रहे हैं, उधर लाश जल रही है, रास्ता सब बंद हो गया, ये लास्ट रास्ता है।
कई दिनों से वाराणसी में गंगा खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। गाजीपुर, चंदौली, बांदा, कन्नौज, कानपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, रायबरेली, फैजाबाद और सबसे ज्यादा इलाहाबाद और बलिया में बाढ़ उफान पर है। अब तक उत्तर प्रदेश में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 40 से ऊपर पहुंच चुकी है। आने वाले दिनों में अगर बारिश और बाढ़ का प्रकोप थमा नहीं तो जान माल का नुकसान और भी ज्यादा हो सकता है। वाराणसी से रोशन जायसवाल।
ये तो हुई उत्तर प्रदेश और बनारस की बात। उत्तर प्रदेश से सटे बिहार में भी जब गंगा का पानी चढ़ता है तो किनारों पर रहने वाले जो लोग हैं और जो लोग किनारों से दूर भी रहते हैं आजकल उनकी भी धड़कन बढ़ जाती है। बिहार में बाढ़ की स्थिति पर ताज़ा जानकारी के लिए पटना से हमारे सहयोगी नीरज सहाय कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। नीरज, बताएं बिहार में बाढ़ का खतरा कुछ कम हुआ या हालात पहले से और ख़राब हो गए हैं?
देखिए संदीप, बिहार में गंभीर होती बाढ़ की स्थिति पर केंद्र सरकार नज़र रखे हुए है। कल गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया था। दो दिन पहले मध्य प्रदेश के बाणसागर डैम से जो 3,87,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया वो बिहार पहुंच गया है। इसकी वजह से सोन और गंगा के जलस्तर में कल देर शाम से फिर से वृद्धि देखी जा रही है। बक्सर से लेकर मोकामा तक के दियारा इलाके में इसका असर दिख रहा है। अगले 24 घंटे का समय बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए अहम साबित हो सकता है। हालांकि राजधानी पटना के शहरी क्षेत्र सुरक्षित बने हुए हैं लेकिन अन्य प्रभावित इलाकों जैसे बेगूसराय में स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। राज्य में मुख्य नदियों के साथ साथ सहायक नदियां भी उफान पर हैं। कल खगड़िया के रिंग बांध टूटने और मुंगेर शहर के हिस्सों में पानी के घुसने से अफरा तफरी का माहौल रहा। भागलपुर भी एक तरह से कह लें तो टापू ही बन गया है और गया नवादा मार्ग भी बाढ़ के कारण अवरुद्ध हो गया है। राज्य में सोमवार तक 19 लोगों की जान जाने की बात आई थी और अभी ताजा स्थिति के लिए शाम तक का इंतजार करना होगा। बचाव और राहत कार्य के लिए एनडीआरएफ की 15 और 7 एसडीआरएफ की टीम इसमें लगी हुई है
जी।
लेकिन राज्य में चल रहे करीब 162 राहत शिविर जो हैं वो कम जान पड़ रहे हैं। कल कुछ जगहों पर जैसे बेगूसराय और फिर उसके बाद खगड़िया में लोगों ने राहत ना पहुंचने की वजह से प्रदर्शन भी किया है। अभी बिहार में खतरा टला नहीं है, अभी स्थिति मतलब कि 2 दिनों तक ऐसी ही बनी रहने की उम्मीद की जा रही है।
ये थे नीरज सहाय पटना से। और बिहार के बाद रुख कर रहे हैं मध्य भारत का। मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में जमकर बारिश हुई है जिससे नदियों का जलस्तर काफ़ी बढ़ गया है। बीते 36 घंटे में कम से कम 7 लोगों की मौत हुई है मध्य प्रदेश में। और जानकारी के साथ भोपाल से सूर्य न्याजी।
मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र के बाद अब बारिश ने पश्चिमी मध्य प्रदेश का रुख कर लिया है। सबसे ज्यादा खराब हालात मंदसौर, नीमच और टीकमगढ़ के हैं। वहीं प्रदेश के गुना, राजगढ़, शिवपुरी और उज्जैन जिलों में भी लगातार बरसात हो रही है। क्षेत्र की चंबल, शिवना और शिप्रा सभी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मंदसौर कलेक्टर स्वतंत्र सिंह ने बताया,
वहां के लोगों को हिदायत दी गई है कि वो अपर लेवल पे आकर शिफ्ट हो जाएं। वैसे एरियाज पे हमारी खासतौर पे नजर है, पूरी जो टीम है आपदा प्रबंधन वाली वो वहीं पे मैदान में है और सिचुएशन पे निरंतर नजर रखे हुए है। अपर कैचमेंट एरियाज में जो डिस्ट्रिक्ट है उनसे भी हमारी लगातार बात हो रही है और उम्मीद अगले 24 घंटे की ये है कि वाटर रिसीड करेगा।
प्रदेश के हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक बुलाई और प्रदेश भर की स्थिति पर चर्चा की। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि रीवा, सतना और पन्ना में बड़ी तादाद में मकानों को नुकसान पहुंचा है, इसलिए इन क्षेत्रों में आवास सुविधा बहाल करने को प्राथमिकता दें। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि सेना से लगातार संपर्क बनाए रखें ताकि जरूरत पड़ने पर और जवानों को बुलाया जा सके। शुरहन्याजी, बीबीसी न्यूज, भोपाल।
मध्य प्रदेश से ही सटा हुआ है राजस्थान, जहां इस साल खूब अच्छी बारिश हुई है। राजस्थान में बारिश से जुड़ी घटनाओं में हालिया दिनों में कम से कम 10 लोग मारे गए हैं। और जानकारी के साथ जयपुर से नारायण बारेठ।
दक्षिणी राजस्थान और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में पिछले 2 दिन में बरसात ने भारी जनजीवन अस्त व्यस्त किया है। आपदा नियंत्रण विभाग के अनुसार अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 100 से ज्यादा लोगों को सेना या अन्य सुरक्षा बलों की सहायता से बचाया गया है। बाढ़ नियंत्रण कक्ष का कहना है कि ऐसी स्थिति पहली बार बनी है जब चित्तौड़ जिले में 60 साल का रिकॉर्ड टूटा है। ऐसा कहा जा रहा है कि सभी नदियों में उफान है और बांध लबालब भरे हैं। अनेक स्थानों पर चौकसी रखी जा रही है। हालांकि मौसम विभाग ने आज थोड़ी राहत की सूचना दी कि आज बारिश से कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन अब भी अनेक जिलों में सतर्कता बरती जा रही है ताकि कोई नुकसान न हो। चूंकि राजस्थान में बरसात की एक एक बूंद का बहुत महत्व है, इतना पानी व्यर्थ चले जाने पर भी प्रबंधक चिंता जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि राज्य में भारत का 10% क्षेत्रफल आता है जबकि इनके पास सतह का 1% पानी है। राहत के लिए सभी जिलों में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। कुछ स्थानों पर सेना और राज्य पुलिस बल को तैयार रखा गया, नौकाएं तैयार रखी जा रही है, तैराक तैयार रखे जा रहे हैं। जो जो सड़क मार्ग है उन पर चौकसी बरती जा रही है। जो बड़े बांध है उनके दरवाजे खोले गए हैं ताकि उनमें पानी जमा होकर कोई नुकसान न पहुंचाए। क्योंकि बांधों के गेट खोले गए इसलिए वो पानी कुछ स्थानों पर सड़कों पर लबालब आ रहा है, इसलिए यातायात को निकालने में भी पर्याप्त सतर्कता बरती जा रही है।
भारी बारिश और बाढ़ की वजह से राजस्थान में भी जनजीवन प्रभावित हुआ है। ये थे जयपुर से नारायण बारेठ।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 31, 25 और 19 मीटर बैंड यानी 9835, 9915, 11995 और 15510 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
भारत प्रशासित कश्मीर घाटी में लगभग 1.5 महीने हो गए हैं। हालात अभी तक सामान्य नहीं हुए हैं। कश्मीर घाटी में कर्फ्यू लगा हुआ है। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा के लिए जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों का एक प्रतिनिधिमंडल कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मिला। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के हालात बेहतर बनाने के लिए बातचीत और स्थायी समाधान की ज़रूरत है। इस बयान और हालिया घटनाक्रम के संदर्भ में हमारे सहयोगी अमरेश द्विवेदी ने कश्मीर के लिए भारत सरकार के वार्ताकार रहे MM अंसारी से बात की और पहला सवाल यही पूछा कि कश्मीर के मामले में भारत सरकार के रवैये में क्या कुछ नीतिगत बदलाव नजर आता है।
जो प्रधानमंत्री जी ने कहा वो बड़ी अच्छी बात कही और ये होना चाहिए, लेकिन इसमें कोई नई बात नहीं है। ये तो हमारे तमाम लीडर्स ने कहा है कि जम्मू एंड कश्मीर एक द्विपक्षीय बायलेटरल इशू है और इंडिया पाकिस्तान के बीच में, और हमारे और भी स्टेक होल्डर्स हैं जो जम्मू एंड कश्मीर में हैं, उनसे बातचीत से ही सुलझाना चाहिए। लेकिन मेरा मानना यह है कि ये बातें हम लोगों ने शिमला एग्रीमेंट में भी यही कहा कि दोनों देश जो है वो मिलजुल करके बातचीत के जरिए हल करेंगे, लेकिन उसमें कोई बहुत ज़्यादा कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। फिर इसके बाद PDP और BJP के समझौते में भी इस बात का जिक्र है कि ये डायलॉग प्रोसेस से ही और खास करके मेजर स्टेक होल्डर्स से बात करके इस मसले को सुलझाएंगे, जिसमें स्टेक होल्डर्स में पाकिस्तान भी है और हमारे जम्मू एंड कश्मीर के भी लोग हैं। और उसमें ये भी कहा कि बिना किसी आइडियोलॉजिकल आस्पेक्ट्स को देखते हुए, यानी कि वो हुर्रियत से भी बात करेंगे। और ऐसा पहले हुआ, मनमोहन सिंह ने उन लोगों से बात की, वाजपेयी साहब ने किया, आडवाणी साहब ने किया। तो मैं ये देख रहा हूँ कि एक कंप्लीट शिफ्ट है इस गवर्नमेंट में।
जम्मू कश्मीर के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला साहब, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री से मिलने के बाद कि अक्सर डेवलपमेंट की बात की जाती है कि जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट होगा तो समस्या का समाधान होगा। उन्होंने कहा कि समस्या का समाधान डेवलपमेंट से नहीं होगा, इसका सियासी हल ढूंढना होगा। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इससे?
ये तो बात सही है कि एक सियासी मसला है और सियासी हल हमें ढूंढना है, लेकिन डेवलपमेंट और सोशल वेलफेयर और ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो हो रहे हैं, अगर उस माध्यम से हम करते हैं तो वो भी एक अच्छी पॉलिटिक्स है। तो डेवलपमेंट और जो विकास की हम जब बात करते हैं तो वो विकास से बेहतरीन कोई और पॉलिटिक्स और सियासत हो ही नहीं सकती। लेकिन बदकिस्मती से हो ये रहा है कि जो पॉलिटिकल जो आस्पेक्ट जो पहले अब सामने आ गई है, उसकी वजह यही है कि वहाँ पे एलिनेशन बहुत हुआ है, वहाँ मार्जिनलाइजेशन बहुत हुआ है, वहाँ पे जो कर्फ्यू और हड़ताल जो पिछले 30 सालों में होता रहा है, और इस बीच में जो हमारे नौजवान जो पले बढ़े उनको वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली जो देश में, मुल्क में और नौजवानों को मिली है।
पिछले 45 दिनों से राज्य के हालात बहुत ही खराब हैं, अभी भी शांति स्थापित नहीं हो सकी है, घाटी में कर्फ्यू अभी भी जारी है। ऐसे में डायलॉग की बात की जा रही है, स्थायी हल की बात की जा रही है, लेकिन इसी बीच पाक प्रशासित कश्मीर में तिरंगा लहराने की भी बात हो रही है, बलूचिस्तान की भी बात हो रही है। ऐसे में इस तरह के जो वक्तव्य हैं उससे शांति प्रक्रिया स्थापित करने में, बहाल करने में कितनी मदद मिल सकेगी?
बिल्कुल नहीं मदद मिलेगी। देखिए, इसलिए कि ये जो बलूचिस्तान और POK की बात हुई है तब हुई है जब हमारे यहाँ बच्चे मर रहे थे, जब हमारे बच्चों को अंधा किया जा रहा था। तो ऐसे में जाहिर है कि वहाँ पे गुस्सा एक और आया। जब तक ये माहौल जो है वो साजगार नहीं होंगे, बात को बढ़ाना मुश्किल होगा। दूसरी ये कि लोगों को गुस्सा यूँ आया कि देखिए, कश्मीर से बलूचिस्तान का जो कंपैरिजन है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, इसलिए कि कश्मीर एक द्विपक्षीय मामला है जिसको हमने शिमला एग्रीमेंट में UN रेजोल्यूशन में माना है, और बलूचिस्तान जो है वो इंटरनल मामला है और पाकिस्तान को सुलझाना है। और इंडिया की जो पॉलिसी रही है वो ये रही है कि हम किसी के अंदरूनी मामले में दखल नहीं देंगे। तो ये जो हमारे यहाँ से बढ़ चढ़ कर इस तरह के बयान जो आए हैं, वो मैं समझता हूँ कि वो बड़े अच्छे टेस्ट में नहीं है।
ये थे MM अंसारी, जो कश्मीर मामले के लिए भारत सरकार के वार्ताकार रह चुके हैं। कार्यक्रम में आगे आप सुनेंगे दिल्ली से छपने वाले अखबारों की सुर्खियाँ आज क्या कह रही हैं, लेकिन पहले एक और खबर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के एक और नेता ब्रजेश पाठक ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। पाठक जैसे बाहरी नेताओं का BJP में स्वागत तो किया जा रहा है, लेकिन जानकार मानते हैं कि इससे पार्टी के भीतर उठा पटक और बढ़ सकती है। लखनऊ से समीरात्मज मिश्र की रिपोर्ट।
यूं तो पिछले कई दिनों से ब्रजेश पाठक के पार्टी छोड़ने की खबरें आ रही थी, लेकिन जितनी तेजी से ये खबरें निकल रही थी उससे ज्यादा तेजी के साथ पाठक उसका खंडन करते थे। पाठक को सोमवार को नई दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता दिलाई गई और रविवार को वो दिल्ली से कुछ ही दूर आगरा में बहुजन समाज पार्टी की रैली की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। इतनी तेजी से वो दल बदल कर लेंगे इसका अंदाजा किसी को नहीं था। ब्रजेश पाठक उन्नाव से बीएसपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं और उसके बाद पार्टी ने उन्हें राज्यसभा सदस्य भी बनाया था। वो दोबारा राज्यसभा में जाना चाहते थे लेकिन पार्टी ने उन्हें नहीं भेजा। शायद बीएसपी छोड़ने के पीछे ये प्रमुख वजह हो। लेकिन बीजेपी से उनकी ऐसी क्या डील हुई कि निष्ठा बदलने में 24 घंटे भी नहीं लगे? इस सवाल के जवाब में बीजेपी के प्रदेश महामंत्री विजय बहादुर पाठक कहते हैं,
देखिए हम कैडर आधारित पार्टी हैं और हम कार्यकर्ता की सामग्री से दल का विस्तार कर रहे हैं। हमारा ये मानना है कि परिवार बढ़े और जब उन्होंने मिश्र काल से सदस्यता शुरू की तो हमारी सदस्यता तो कोई ले सकता है। ये तो हमने तय किया है रास्ता ना कि हमको परिवार बढ़ाना है, पूरा आमंत्रण देना है लोगों को, तो हमारे साथ आए और देश के निर्माण में सहभागी बने। लेकिन किसी के साथ कोई कमिटमेंट नहीं है, लेकिन जब हम एक बार किसी को भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना लेते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को तो अपनी बात कहने का अधिकार है ना। तो अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को अपनी बात कहने का अधिकार है तो फिर जिन्हें हम शामिल करा रहे हैं उन्हें अपनी बात कहने का अधिकार तो नहीं होगा।
ब्रजेश पाठक पिछले कई सालों से बीएसपी के ब्राह्मण चेहरों में से एक थे। साल 2012 में बीएसपी की कथित सोशल इंजीनियरिंग में पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्र के साथ उन्होंने भी अहम भूमिका निभाई थी। सतीश मिश्र के वो बेहद करीबी माने जाते हैं, लेकिन बीजेपी से नजदीकी भांपने के बाद पाठक को बीएसपी से निकालने की सूचना भी सतीश मिश्र के जरिए ही प्रसारित कराई गई। बीजेपी में इससे पहले भी बहुजन समाज पार्टी के कई नेता आ चुके हैं। बीएसपी के हम नेता स्वामी प्रसाद मौर्य इनमें प्रमुख है। वहीं राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीएसपी में इन नेताओं की जो मांग पूरी नहीं हो पाई शायद बीजेपी वो कर दे। लेकिन सवाल उठता है कि इससे पार्टी का जो मूल कार्यकर्ता है क्या वो खफा नहीं होगा? और फिर ऐसी स्थिति में इन नेताओं को लेने से बीजेपी को क्या फायदा होगा? शरद प्रधान कहते हैं,
बीजेपी का कितना फायदा होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है और मायावती को नुकसान जरूर होगा। नुकसान इसलिए होगा कि एक परसेप्शन बन जाता ना कि लोग छोड़ रहे हैं, तो जब छोड़ने लगते हैं लोग तो डूबते जहाज से कोई सवारी नहीं करना चाहता। तो होगा क्या कि जब ये फीलिंग हो जाएगी तो मुस्लिम वोट भी छोड़ देगा, तो मायावती को जो लॉस है वो बड़ा काफी ज्यादा हो सकता है।
बहरहाल बीजेपी का कहना है कि वो अपना परिवार बढ़ा रही है और उसके दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। लेकिन जानकारों का कहना है कि दरवाजे भले खुले हैं लेकिन आने वाले दिनों में जब दरवाजे के भीतर बैठे लोगों से उनका सामना होगा और एक दूसरे के हितों में टकराव होगा तो पार्टी नेतृत्व को बाहरी और भीतरी के बीच चुनाव करना मुश्किल में डाल सकता है। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
और आइए अब निखिल रंजन से जानते हैं दिल्ली से छपने वाले अखबारों की सुर्खियाँ आज क्या कह रही हैं।
दिल्ली से जो अखबार इस वक्त मेरे सामने पड़े हुए हैं तो उसमें आप देख सकते हैं कि जो कल पीवी सिंधु का भव्य स्वागत हुआ हैदराबाद में और उसकी खबरें हैं, उसकी तस्वीरें हैं, लेकिन एक बहुत जो अहम जगह दी गई है ज़्यादातर अखबारों में वो उस खबर को है जिसमें कि आपको याद होगा कि 2009 में दो लड़कियों की हत्या हो गई थी जब वो ऑफिस से लौट रही थी, हालांकि 6 महीने के डिफरेंस पर हुआ था। जी बिल्कुल, और ये वसंत विहार, एक हत्या जो है वसंत विहार में हुई थी और एक वसंत कुंज के पास हुई थी। तो इन दो हत्याओं में एक लड़की जो जिगीशा घोष थी उनके पिता ने बड़ी सक्रियता दिखाई और क्रेडिट कार्ड के जो रिकॉर्ड्स थे उसको फॉलो करते हुए उन्होंने पुलिस की मदद की उस दुकान में जहां से उनके चोरी का सामान खरीदने के लिए, मतलब सामान के साथ जो कार्ड मिला था उसको खरीदने के लिए जो दुकानदार के पास गए थे हत्यारे, उनको उन्होंने गिरफ्तार करवाया। कल इस मामले में, 2009 की ये घटना है, कल इस मामले में अदालत ने जो तीन लोग पकड़े गए थे उनमें से दो को मौत की सज़ा और एक को फांसी की सज़ा दी है। तो ये खबर कई अखबारों में सबसे प्रमुख खबर के रूप में प्रकाशित हुई है और इसको सब लोगों ने सुर्खियाँ भी बनाई है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि रियो ओलंपिक में जो एक भारतीय एथलीट थी मैराथन रनर जैशा, उनके साथ जो दुर्घटना हुई है उसको भी कई अखबारों ने पहली खबर बनाई है कि और उन्होंने ये जो बयान दिया है कि रियो ओलंपिक में जा सकती थी मेरी जान, मतलब उनको मैराथन के दौरान पानी नहीं मिला, ये अमर उजाला और कई और दूसरे अखबारों में सबसे पहली खबर के रूप में आई है। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री की कल कश्मीर के विपक्षी नेताओं के साथ बातचीत हुई है और उस बातचीत में के बाद प्रधानमंत्री ने ये बयान दिया कि उन्हें बहुत दुख है कश्मीर में जो इस वक्त کرفیو اور اس طرح کے جو حالات بنے ہوئے ہیں اسے لے کر کے، وہ خبر بھی جو ہے زیادہ تر اخباروں میں پہلے پنے پر سب سے بڑی خبر کے روپ میں سامنے آئی ہے، جیسے کہ آپ انڈین ایکسپریس میں دیکھ سکتے ہیں یہ سب سے بڑی خبر ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ٹائمز آف انڈیا، اس نے بھی اس خبر کو پرمکھتا سے دیا ہے جگہ۔ اور اس کے علاوہ جو جگیسا کے مدد جو ہتھیارے تھے ان کی بات جو میں نے کی، وہ خبر بھی یہاں پرمکھ استھان پر ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے جو سینئر بی ایس پی نیتا ہیں پاٹھک، جس کی خبر ہم لوگوں نے بھی ابھی چلائی تھی، ان کو ان کے بی جے پی میں جانے کی خبر جو ہے وہ بھی اخباروں میں پہلے نمبر پر ہے۔ اور جو پائریٹڈ فلم ڈاؤن لوڈ کرتے تھے دیکھتے تھے، اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ 3 سال کے جیل کی سزا مل جائے، یہ خبر بھی سبھی اخباروں میں لگ بھگ پہلے پنے پر۔
میں آپ سے نہیں پوچھوں گا کبھی آپ نے اس طرح کا کام کیا ہے یا نہیں۔ بہرحال بڑھتے ہیں، اب وقت ہو چلا ہے کھیل سماچاروں کا۔
کھیل سماچاروں کے ساتھ میں ہوں آدیش کمار گپت۔ ابھی ریو میں سماپت ہوئے 31ویں اولمپک کھیلوں میں بھارتی کھلاڑیوں دوارا کیے گئے پردرشن پر وشلیشن ہو ہی رہا تھا کہ اسی بیچ سرکار نے راجیو گاندھی کھیل رتن، دروناچاریہ پرسکار اور ارجن پرسکار کے لیے کھلاڑیوں اور کوچوں کے نام کا اعلان کر دیا۔ سرکار نے پہلی بار ایک ساتھ 4 کھلاڑیوں کو راجیو گاندھی کھیل رتن سے سمانت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان میں ریو میں بیڈمنٹن میں رجت پدک جیتنے والی پی وی سندھو، کانسے پدک جیتنے والی مہیلا پہلوان ساکشی ملک، نشانے باز جیتو رائے اور مہیلا جمناسٹ دیپا کرماکر شامل ہیں۔ دروناچاریہ پرسکار پانے والوں میں ناگپوری رمیش ایتھلیٹکس میں، ساگر مل دیال مکے بازی میں، راج کمار شرما کرکٹ میں، بسویشور نندی جمناسٹک میں، ایس پردیپ کمار تیراکی اور لائف ٹائم، اور مہابیر سنگھ کشتی میں شامل ہیں۔ ارجن پرسکار پانے والوں میں تیراندازی میں رجت چوہان، ایتھلیٹکس میں للیتا بابر، بلیئرڈس اور سنوکر میں سورہ کوٹھاری، مکے بازی میں شیو تھاپا، کرکٹ میں اجنکیا رہانے، فٹ بال میں سبرت پال، ہاکی میں رانی اور وی رگھوناتھ، نشانے بازی میں اپوروی چندیلا اور گرپریت سنگھ، ٹیبل ٹینس میں سومیجیت گھوش، کشتی میں وینیش، امت کمار اور سندیپ مان شامل ہیں۔ ادھر پورٹ آف اسپین میں بھارت اور ویسٹ انڈیز کے بیچ کھیلا گیا 4th اور آخری ٹیسٹ میچ بنا کسی نتیجے کے ڈرا سماپت ہو گیا۔ دراصل کھیل کا 5th اور انتم دن تو بارش کی بھیڑ چڑھا ہی، ساتھ ہی پہلے دن کا کافی حصہ اور اس کے بعد 3rd اور 4th دن کا کھیل بھی نہیں ہوا۔ پہلے دن کیول 22 اوور کا کھیل ہو سکا، جس میں ویسٹ انڈیز نے 2 وکٹ کھو کر 62 رن بنائے۔ اس کے باوجود بھارت نے 4 ٹیسٹ میچوں کی سیریز 2-0 سے جیت لی، لیکن 4th ٹیسٹ میچ ڈرا ہونے کا خامیازہ بھارت کو بھگتنا پڑا اور بھارت آئی سی سی ٹیسٹ رینکنگ میں 2rd استھان پر کھسک گیا، جبکہ پاکستان 111 ریٹنگ انکوں کے ساتھ پہلے استھان پر پہنچ گیا۔ آسٹریلیا 3rd استھان پر ہے۔ وہیں نیوزی لینڈ اور دکشن افریقہ کے بیچ ڈربن میں کھیلا جا رہا پہلا ٹیسٹ میچ بھی بارش کی بھیٹ چڑھتا نظر آ رہا ہے، کیونکہ 4th دن بھی ایک بھی گیند نہیں ہو سکی اور کھلاڑی پیویلین میں ہی بیٹھے رہے۔ اس ٹیسٹ میچ میں بارش کا سایہ کھیل کے دوسرے دن ہی پڑ گیا، جب دکشن افریقہ کے پہلی پاری میں بنائے گئے 263 رنوں کے جواب میں نیوزی لینڈ نے اپنے 2 وکٹ کیول 15 رن پر کھو دیے تھے۔
کھیل سماچار کے بعد کارکرم کے سماپن سے پہلے وشو سماچار ایک بار پھر نکھل رنجن سے۔
بی بی سی سماچار۔ اتر بھارت کے میدانی علاقوں میں باڑھ کی سمسیا گمبھیر ہو گئی ہے۔ اتر پردیش، بہار، راجستھان، مدھیہ پردیش میں باڑھ کے کارن لاکھوں لوگ پربھاوت ہوئے ہیں۔ بڑی سنکھیا میں لوگوں کو اپنا گھر چھوڑ کر سرکشت استھانوں پر جانا پڑا ہے۔ بنگلہ دیش کے چٹگاؤں شہر کی ایک کھاد فیکٹری میں گیس رساؤ کے بعد قریب 40 لوگوں کو اسپتال میں بھرتی کرایا گیا ہے۔ ترکی کی سینا نے اتری سیریا میں ٹینکوں سے اسلامک اسٹیٹ اور کرد ملیشیا کے ٹھکانوں پر حملے کیے ہیں۔ ترکی سے ہوئی اس گولہ باری میں جرابلوس اور منبی شہر میں موجود ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ دکشن افریقہ کی ستاداری افریقی نیشنل کانگریس نے دیش کے سب سے بڑے شہر اور آرتھک کیندر جوہانسبرگ پر اپنا نینترن کھو دیا ہے۔ وپکشی دلوں کے گٹھ بندھن ڈیموکریٹک الائنس کے ہرمن مشابہ کو شہر کے پارسدوں نے میئر چن لیا ہے۔ بی بی سی سماچار۔
نمسکار بھارت میں اتنا ہی۔ کارکرم کا تکنیکی پکش سنبھال رہے تھے راجیش چوہان۔ آپ چائے پیجیے، ہم 1 گھنٹے کے بعد پھر حاضر ہوں گے وشو بھارتی لے کر۔ تب تک سندیپ سونی کو دیجیے اجازت۔